हेलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब तो ठीक ठाक होकर के बैठेंगे, ठीक है ना? अच्छा, आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, जिम्मेवारियां निभाते हुए जीवन मुक्त स्थिति का आनंद। आप देखेंगे, जब हम लोग ज्ञान में आए थे तो सबसे पहले हमें लक्ष्य दिया गया था कि आपको प्रवृत्ति में रहते हुए जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंद नहीं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। जीवन मुक्त स्थिति एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। इस स्थिति के सिंहासन पर स्थित होने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। हम सबकी शुभ इच्छा तो रहती है कि हम संसार में भी रहे, कारोबार में भी रहे, व्यवहार में भी रहे, परंतु ये सब कुछ करते हुए हमारी जो मनोस्थिति है वो जीवन मुक्त बन जाए, इच्छा रहती है ना हम सबकी। अब वो स्थिति कैसे बने, उसके लिए बहुत सारा श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, पुण्य कर्मों का खजाना, दिव्य गुणों, बहुत सारे दिव्य गुण और बहुत सारी शक्तियां जब तक हमारे जीवन के अंदर नहीं आती है, तब तक हम जीवन में रहते हुए, हर कर्म क्षेत्र में रहते हुए एक जीवन मुक्त स्थिति का आनंद ले सके वो थोड़ा सा संभव नहीं है। तो उसके लिए हमें हर संभव यही पुरुषार्थ करना है कि हम संसार में कारोबार भी करें, संसार में अपने जो जो ड्यूटी हमें मिली है उसमें भी चले, परंतु साथ साथ अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को भी, पुण्य के खाते को भी जमा करने का। जैसे आप देखेंगे संसार में हर प्राणी ये सोचता है कि मैं कारोबार तो कर रहा हूं, पर कारोबार करते हुए मेरे पास संचित धन जरूर चाहिए। अगर वो संचित धन नहीं होता तो उसको बहुत अंदर अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं कि कुछ तो होना चाहिए आई वेला के लिए मैं उसको फेस कर सकूं। ठीक इसी प्रकार जिम्मेवारियां निभाते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव वो ही कर सकता है जो हर कर्म करते हुए ये ध्यान दे कि मुझे कर्म के बंधन में नहीं आना। अगर कर्म बंधन, कर्म करते हुए कर्म के बंधन और हिसाब किताब हम बना दे जाएंगे तो कर्ज सिर पर चढ़ता जाएगा, तो हमारी अंदर हमारी इनर पावर इतनी बुलंद नहीं होगी जो हम इस स्थिति के सिंह इसका आनंद ले सके। इसी प्रकार हर कर्म करते हुए हमें इस बात का भी सदा ध्यान रहना चाहिए कि मैं संतुलित जीवन जीऊं, क्योंकि संतुलन में बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है अपने आप में। संतुलन का मेरा मतलब ये नहीं है कि बराबर बराबर, संतुलन का मेरा मतलब ये है कि जितना जिस अनुपात से जो वस्तु चाहिए उसी अनुपात से उसका प्रयोग किया जाए जिससे हमारे व्यर्थ संकल्प विकल्प ना चले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी बनाने में 1 किलो चावल और 1 किलो नमक नहीं डालेंगे, बराबर बराबर अगर होगा क्या करेंगे, जिस अनुपात से नमक चाहिए, जिस अनुपात से पानी चाहिए, जिस अनुपात से घी चाहिए और जिस अनुपात से अग्नि चाहिए उसके अनुकूल वो आप बनाएंगे तो एक अच्छी खिचड़ी बन जाएगी और आपको स्वादिष्ट लगेगी। इसी प्रकार हम जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेना चाहते हैं तो वो आनंद हमें तभी आ सकता है जब हम प्रत्येक कार्य करते हुए इस बात का अटेंशन देंगे कि मुझे कर्म के बंधन में नहीं फंसना, मुझे अपने जीवन को जो मेरे बाबा ने मुझको बताया है कि जीवन में रहते हुए कमल सम रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, उसकी बहुत बड़ी गृहस्थी है, परंतु उस गृहस्थी के बीच में रहते हुए वो जब कमल तैयार हो जाता है, खिल जाता है, तो उनसे डिटैच हो जाता है। तो इसी प्रकार संसार में रहते हुए जिम्मेवारियां निभाते हुए जितना हम अनासक्त वृत्तियों से काम करेंगे उतना आपका मान होगा, सत्कार होगा। जितना आप आसक्त होकर के काम करेंगे उतना वो चीज आपसे बहुत दूर दूर चली जाएगी, मान शान का तो पत्ता ही कट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संसार में रहो परंतु संसार में रहते हुए गुलाब की तरह रहो या कमल की तरह रहो, बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया। और अपने आप को दिव्य गुणों से भी संपन्न करो, क्योंकि जहाँ दिव्यता है, जहाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों में बैलेंस है, वहाँ ही प्राप्तियां होती है। आप देखेंगे दिव्य गुणों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, वो है जिम्मेवारी का गुण। जिम्मेवारी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है और जो व्यक्ति संसार सर्कल में रहते हुए जिम्मेवारियों से काम करता है वो व्यक्ति सदा ही विधि पूर्वक काम करेगा। वो व्यक्ति जैसे आप देखेंगे, हम यज्ञ इतिहास को देखें तो ब्रह्मा बाबा ने और मामा ने जो भी हमारे सामने आज हम बहुत एक बहुत बड़ा विस्तार देख रहे हैं तो उसका बीज अगर देखेंगे जो बनाने वाले हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेवारी से, बहुत मर्यादा पूर्वक और बहुत श्रीमत को सामने रखते हुए और जो बाबा ने उनको धारणाएं बताई, उन धारणाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए इस यज्ञ का संचालन किया और बच्चों की भी बहुत विधि पूर्वक पालना की, हर बात में बैलेंस भी रखा और साथ साथ जो बाबा को ज्ञान योग दिव्य गुणों से श्रृंगारना था वो भी बताया और उसके साथ साथ कहा बच्चे थोड़ा बहुत नीचे पर भी करते तो हमें यज्ञ इतिहास को पढ़ते हैं तो ये भी पता लगा कि जब बच्चे देर से क्लास के अंदर आते तो बाबा कहते बाहर खड़े हो जाओ, टाइम नहीं है ना? तो शुरू से लेकर के बाबा ने बहुत मर्यादाओं से इस संस्था को, नियमों से, अनुशासन से चलाया और आज उसका प्रभाव हम सब देख रहे हैं। इसी प्रकार जिम्मेवारी जो है एक बहुत बड़ा टीचर भी है। आप कहेंगे टीचर कैसे, जिम्मेवारी अपने आप में एक बहुत बड़ा टीचर है। जैसे आप देखेंगे टीचर होता है तो वो बच्चों को लायक बनाने के लिए हर तरह से उनको चलाने की कोशिश करता है और एक दिन अगर उसकी शुभ भावना रहती है तो एक दिन एक लायक स्टूडेंट बना लेता है वो। इसी प्रकार जिम्मेवारी अपने आप में कैसे टीचर है, जो जिम्मेवार व्यक्ति होगा वो जवाबदार है, और वो कहां जीवन के अंदर उतार चढ़ाव कुछ भी आता है तो उन उतार चढ़ाव से ही अपने आप को शिक्षा देता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इस परिस्थिति का ऐसे सामना करना चाहिए। ऐसे अपने आप को समझाते समझाते वो एक दिन अच्छा जवाबदार बन जाता है। और आप देखेंगे जो जिम्मेवार जिम्मेवारी से काम करते हैं उनके जीवन में बहुत हल्कापन रहता है, बहुत उमंग भी रहता है, उत्साह भी रहता है, और कार्य करने की क्षमता भी होती है उनके अंदर, क्योंकि उसको लगता है कि मुझको जो ड्यूटी दी गई मुझे उसको जिम्मेवारी से करना है और सुचारू रूप से करना है, विधि पूर्वक करना है, तो विधि में सिद्धि तो समाई हुई है ही। इसलिए वो कार्य करते हुए भी प्लानिंग करके कार्य करता है और कार्य करते हुए भी वो हल्का भी रहता है, खुश भी रहता है। जब उसको उपलब्धियां प्राप्त होती है खुशी भी मिलती है। मुझे याद आता है अपने ही जीवन की बात, मेरे को शुरू में पब्लिसिटी का काम दिया गया था, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर शुरू से ही एक संस्कार है कि मैं जो भी काम करूं उसको विधि पूर्वक करूं, जो भी काम करूं उसको प्लानिंग से करूं, उसका राइट लेफ्ट सोच करके करूं, और फिर उस काम को बहुत सुचारू रूप से करूं जिसका रिजल्ट अच्छा हो। और मैंने देखा कि जब हम जवाबदारी से काम करते तो बाबा उसका फल भी जरूर देता है। और आज हमने देखा जिसके लिए लाखों लाखों रुपया खर्च होता था, वो हम जब किसी कंपनी में जाकर के बात करते और उनसे कहते कि हमको बहुत बड़े बड़े बैनर, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाने हैं, तो मैंने देखा मेरे मन में अगर निश्चय है, मेरी सोच अगर अच्छी है, मेरे वाइब्रेशन अच्छे है, मेरे मन में शुद्धि है, निस्वार्थ भावना है, तो क्या होता था जिस भी व्यक्ति के सामने जाके खड़े होते वो बहन जी जो आप कहेंगे हम करेंगे। तो ये उपलब्धियां जिम्मेवार व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं, और जो जिम्मेवार नहीं होता उसको कोई भी काम अगर आप देंगे ना, पहले तो वो होपलेस हो जाएगा, भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। पहले ही उसको अपने पास विश्वास खत्म है। जहां विश्वास नहीं, जहां निश्चय नहीं, वहां प्राप्ति कैसे होती है। परंतु जिम्मेवार व्यक्ति सदा ये सोचता है कि विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं अपने लिए नहीं कर रहा, बाबा भी अपने लिए नहीं कर रहा। आप देखेंगे बाबा और मम्मा ने इस संस्था को चलाने के लिए, इस यज्ञ को चलाने के लिए उनके आगे कितनी भी परीक्षाएं आई, कितनी भी बातें आई, परंतु बाबा कहता था कि कुछ नहीं है, नथिंग न्यू, ये कुछ नहीं है बच्चे, आगे चलो, कदम कदम को आगे बढ़ाते चलो, और बच्चों को साथ लेकर के बाबा चला। मैंने बाबा कई बार चैम्बर में बच्चों के साथ बैठ करके दिल की बातें चिते करता था, लेन देन करता था। तो जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है उसके जीवन में खुशियां तब आती है, जब वो हल्कापन तब आता है, जब वो अपने आप से भी बात करना जानता है, औरों से भी बात करके उसका हल निकालता है ना, तो उससे क्या होता है उसका कदम अपने आप में आगे बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार अभी आप सब ग्रस्त में रहने वाले भाई बंधु हैं, तो आप ग्रस्त में रहते हुए अगर आप सिर्फ परमार्थ की ओर चल पड़ेंगे तो क्या होगा, आपको खींचने वाले बहुत लोग निकल आएंगे। परंतु अगर आप बैलेंस, गृहस्थ और व्यवहार, इन दोनों का बैलेंस रखते हुए चलेंगे तो क्या होगा, परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा और व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं सिर्फ नशे नशे में चल पड़ते हैं और फिर उसके बाद में उनके जीवन की नैया थोड़ा सा डोलने लग जाती है। परंतु अगर बैलेंस माइंड होकर के चले तो जीवन हमेशा उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, जैसे ये संस्था तरीके से चलती गई और आज उन्नति के शिखर पर पहुंचती गई। अब हम आते हैं कि जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेने के लिए हमें कुछ केंद्र बिंदु ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है, मेरी आंतरिक खुशी को खत्म करने वाली कौन सी चीज है, देह और देह का अभिमान, देह के संबंधों का आकर्षण, मुझे उससे मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं देह भान से, देह के पदार्थों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधियों से अपनी बुद्धि को उपराम नहीं करती हूँ, बीच बीच में मुझे उनका आकर्षण होता रहता है, तो पहला स्टेप है इनसे, इन आकर्षणों से मुक्त होना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है कि अपने जीवन को ऊंच और महान बनाने के लिए, अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आप को निमित्त समझना पड़ेगा। ट्रस्ट इशू की भावना, निमित्त, दादी जी कहा करती थी, निर्मल स्वभाव हो, निमित्त भावना हो, निर्माण वृत्तियां हो, तो नव निर्माण का कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ग्रस्त रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, जिसके हम ट्रस्टी हैं, उनको चलाने के लिए भी हमारे अंदर निर्मल स्वभाव का होना, निमित्त भावनाओं का होना और निर्माण चित होना, नम्र चित होना। क्योंकि नम्रता की वेल में फल देर लगते हैं, अगर हम ईगो होकर के चलते हैं तो उसमें कोई फल नहीं लगता, उसमें दूरियां बढ़ती है। तो नम्र चित होना, एडजस्टिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको आगे ले जाने वाले। लचीलापन होना अपने अंदर, जो बाबा कई बार कहता था, तुम प्योर गोल्ड बन जाओ, गोल्ड बनोगे तो मोल्ड हो जाओगे, अगर मोल्ड होना नहीं आता तो गोल्ड भी नहीं बन सकते ना। तो आज हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम प्योर सोना बन जाएं। अब सोना भी सोना कब बनता है, जब उसको अग्नि के अंदर डाला जाता है ना। इसी प्रकार हम अगर अपनी ऊंच महान स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बीच बीच में तपस्या करना, योग भट्टी करना बहुत बहुत जरूरी है। इसी प्रकार तीसरी बात, खुद से मुक्त होना है हमारे को, आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होना, लगाव झुकाव और प्रभाव से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, रोब से मुक्त होना और व्यर्थ की सब बातों से मुक्त होना। क्योंकि जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हुए तो जीवन मुक्त हम बन नहीं सकते हैं। इन सारी चीजों से हमें मुक्त होना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये लक्ष्य रखना होगा कि मेरा घर एक आश्रम है, मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर एक सेवा स्थान है। सेवा स्थान कैसा होता है, बिखरा हुआ नहीं होता, संवरा हुआ होता है, स्वच्छता होती है, सत्यता की खुशबू आती है और हर चीज बहुत व्यवस्थित होती है। तो इसी प्रकार मेरे घर, मेरा घर जो एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, किसकी खुशबू? पवित्रता की खुशबू, मन वचन कर्म की शुद्धि की खुशबू, खान पान की शुद्धि की खुशबू। क्योंकि अगर हम जीवन मुक्त बनना चाहते हैं, अपनी जवाबदारियों को अच्छी प्रकार से निभाना चाहते हैं, तो हमें दो दोषों से ऊपर उठना होगा, एक अन्न का दोष, एक संग का दोष। क्योंकि अन्न का दोष और संग का दोष एक बहुत बड़ा दोष है जो पुरुषार्थी को, श्रेष्ठ पुरुषार्थी को धीरे 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 संसार की ओर ले जाता है। इसलिए आप देखेंगे बाबा ने शुरू से लेकर के ही अन्न के ऊपर क्या कहा, बच्चे किसी विकारी के हाथों का भोजन नहीं करना है, किसी ऐसे वैसे वातावरण में बना हुआ भोजन नहीं करना है, कहीं ऐसा वैसा अन्न आ जाए, ऐसा वैसा धन आ जाए, उसकी भी संभाल करनी है अगर तुझे योगी बनना है। और संग भी बहुत महापुरुषों का करना है, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग तप वैराग्य वृत्तियां लाकर अपने आप को एक आदर्श बनाया, कमांडर बनाया, लीडर बनाया, उनका संग करना है। बाकी संग दोष और अन्न दोष से बचना है। और हमने देखा शुरू में हमारे इस संस्था के अंदर जब स्थापना का कार्य चल रहा था तो अन्न के ऊपर बहुत अटेंशन दिया जाता था। बाबा कभी देखता था किसी ऐसे वैसे की दृष्टि भी पड़ी है अन्न के ऊपर तो बाबा उस अन्न को स्वीकार नहीं करते थे। और आज हम लोगों की भी ये धारणा है कि हम ऐसे वैसे का अन्न नहीं खा सकते, क्योंकि जब एक लक्ष्य रख दिया जाता है, जब एक हमारा एक ऊंच लक्ष्य है कि हमें जीवन में रहते हुए जीवन के बंधन में ना आकर के यहाँ ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, वो आनंद का अनुभव करना है, क्योंकि जीवन मुक्त स्थिति अतीन्द्रिय सुख से भी ऊपर उड़ जाते हैं जब, तब वो जीवन में रहते हुए हम मुक्त अवस्था में कहते हैं मुक्त बनो, विमुक्त बनो, जीवन मुक्त बनो। मुक्त पहले सबसे मुक्त बन जाइए, सब किनारे सहारे से थोड़ा दूर हट जाइए, फिर विमुक्त हो जाइए, न्यारे हो जाइए, फिर आप जीवन मुक्त बन सकते हैं। नहीं तो जीवन मुक्त बनना मासी का घर नहीं है, है ना, आसान बात नहीं है। परंतु आसान इसलिए है क्योंकि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सारथी है, और बाबा से ही हमें सर्व संबंधों का रस लेना है, तो इसलिए ये सब आसान बन जाता है। वरना अगर हम जीवन में रहते हुए जिम्मेवारियां निभाते हुए वही जैसे संसार के अंदर होता रहता है वही सब कुछ करते रहते हैं, लेन देन हिसाब किताब, तो फिर तो हम व्यर्थ के चक्कर में ही पड़े रहेंगे और जीवन के बंधनों में बनते जाएंगे, निराशा और उदासी हमारे पल्ले पड़ी रहेगी और हम चले दुनिया को सेल्वेज करने। अपने आप को हम कहते हैं हम सेल्वेज आर्मी है, हम इस संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं, इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं। परंतु इस पार से उस पार तभी ले जा सकेंगे जब किनारे खुले हुए होंगे। अगर किनारे बंधे हुए होंगे और फिर चिल्लाते रहेंगे कि कोई मेरे को किनारे लगा दे सहारे, कोई मुझे ले जाए इस पार से उस पार, वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति अगर नौका के अंदर बैठा है और वो समझता है कि मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा, परंतु अगर उसका किनारा बंधा हुआ ही है तो कैसे जाएगा? तो पहले जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए हमें अपने जो अनेक सूक्ष्म धागों से, बहुत बड़े बड़े सूक्ष्म धागे हैं, उन धागे के ज्ञान से, योग से, दिव्य गुणों से, धारणाओं से तोड़ना होगा। हमारी को जीवन मुक्त अगर बनना है तो हमारे पास ज्ञान का बल चाहिए, योग का बल चाहिए, गुणों का बल चाहिए और दुआओं का बल चाहिए। दुआएं किसको मिलती है? सबको मिलती है दुआएं? हाँ, किसको मिलती है दुआएं? उसी को मिलती है जो बहुत सरल हृदय बन जाते, मन वचन कर्म की शुद्धि जिसके पास होती है, जिसके पास एक ही लक्ष्य होता है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, मुझे अपने बाबा के समान कल्याणकारी बनना है। आप देखिए, बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी का ठेका दिया है, खुद भी ठेका उठाया है कि मुझे क्या करना है, नरक से स्वर्ग को लाना है, तमो प्रधानता से सत्व प्रधान बनाना है ना, ये ठेका बाबा ने उठाया है। और वो ठेका सिर्फ अकेला नहीं उठाएगा, वो ठेके में हम सब जवाबदार हैं। तो हम सब जो जवाबदार बच्चे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है उन्हीं के कदमों में हम पांव रख करके चल रहे। ये सवाल हमें हम हर एक बच्चे को अपने आप से पूछना है कि बाबा ने हम लोगों को घर गृहस्थी में इसलिए रखा, नहीं तो कहता ना घर बार छोड़ के आ जाओ, इसलिए रखा तुम्हारे को मिलने वाले हजारों लोग हैं, तुम अपने जीवन को इस तरह से डालो, अपने जीवन को इतना से श्रेष्ठ और महान बना लो, अपने आप को इस तरह से अनासक्त वृत्तियों वाला बना लो, अपने आप को इस तरह डिटैच माइंड होकर के चलो जो दुनिया तेरे को देख करके, और अपने आप को इतना मुस्कुराना सिखा दो तो दुनिया देख करके तेरे को पूछे तुम इतना खुश कैसे रहते हो। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा भाई तुम खुश कैसे रहते हो, तो कहा खुश, खुश होने के लिए सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। तो कहा सर्टिफिकेट, अच्छा तो वो कहां से मिलते हैं? तो कहा चलो उसके लिए मैं तुम्हारे को ले चलता हूं। तो वो पहले ज्यादा है तो पहले उसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो आपको हाथ कटवाने पड़ेंगे, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो टांगे कटवानी पड़ेगी, आंख को अगर सर्टिफिकेट लेना है तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। कहा और सब कुछ कर सकता हूं परंतु ये ईगो जो है इसको मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। और आप देखेंगे सबसे बड़ा विकार जो है, सबसे ज्यादा विकृतियां पैदा करने वाला जो है, सबसे ज्यादा परमात्मा से दूर करने वाला जो है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट करने वाला जो है वो है ईगो, अभिमान, देह का वाहन, है ना। या अपने आप को हम ज्यादा ही कुछ समझने लग जाते हैं और फिर हम मैं तू तू के जाल में फंस जाते हैं। तो जब मैं तू तू के जाल में फंसते तो क्या होता है, फिर व्यर्थ ही चिंतन शुरू हो जाता है जिससे हमारी मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाती है और खोखलापन आ जाता है। और फिर हम अपने आप से एक सवाल पूछने लगते हैं, अरे चले तो हम हरि भजन करने या देव आत्मा बनने, परंतु देव आत्मा जैसी सत्व प्रधान स्थिति, देव आत्मा जैसी सोलह कला संपूर्ण स्थिति, देव आत्मा जैसी सर्वगुण संपन्न स्थिति आज प्रतीत नहीं होती है। कभी रजोगुण दिखाई देता है, कभी तमोगुण दिखाई देता है, कभी सतोगुण दिखाई देता है, ना? अपने आप में हम ये सवाल पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चलते चलते ऊंची ऊंची स्मृतियां जो भगवान ने हम बच्चों को दी है उन स्मृतियों के अंदर विचरण नहीं करते हैं। आप देखिए, बाबा ने हमारे को नेचुरल ट्रीटमेंट दिया है, नेचुरल क्योर किया है। आप कहेंगे कैसे नेचुरल क्योर किया? हम भक्ति काल में क्या कहते थे, हे प्रभु जी मेरे दुखों को तुम हर दो, हे प्रभु जी मेरे को सद्बुद्धि दे दो, हे प्रभु जी मेरी ये मदद कर दो, वो मदद कर दो, उसके लिए भक्ति भी कर दे, पूजा करते, कर्मकांड करते, बहुत कुछ करते, परंतु कभी किसी ने ये नहीं समझाया हमारे को कि हे आत्मा तू शरीर नहीं है, आत्मा है, तू एक चैतन्य सत्ता है, और तू चैतन्य सत्ता पहले शुद्ध थी, पवित्र थी, पूज्य थी, देव थी, कर्मातीत थी, विकर्मों से अतीत थी, परंतु जब तू आत्मा इस देह रूपी चोले के अंदर आई तो तू सत्वप्रधान थी, पूज्य रूप में थी, परंतु धीरे धीरे आवागमन के चक्कर में आते आते तेरी ये स्थिति हुई है। अब तू पुनः अपने आप को अपनी आदि अनादि स्मृतियों के अंदर स्मृत कर ले। तो आप देखेंगे बाबा इसी बात का हम बच्चों को अभ्यास कराता है रोजाना। आज भट्टी का भी यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है कि तुम अपनी आदि अनादि स्मृतियों में अपने आप को समृद्ध कर लो, स्थित कर लो, अपने संस्कारों में ले आओ। क्योंकि जब तक संस्कार शुद्ध नहीं हुए, विचार शुद्ध नहीं होंगे, वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी, कर्म शुद्ध नहीं होंगे, संकल्प शुद्ध नहीं होंगे। तो संस्कारों को शुद्ध करना है। संस्कार शुद्ध कैसे होंगे? जब स्मृतियां हमारी ऊंची ऊंची रहेंगी और उसके अनुकूल हम चेकिंग करेंगे। कहते हैं गिरावट के भी दो कारण हैं, टेंशन के दो दरवाजे हैं, मैं और मेरा। ऊंच उठने के भी दो दरवाजे हैं, अटेंशन और चेकिंग, है ना? दो दरवाजों से हम गिरे, टेंशन, मैं, मेरा, ठीक है? मैं, मेरा जितना रहेगा आप देखेंगे उतने हम असक्त रहेंगे, है ना? ये दो दरवाजे हैं गिराने के, और चढ़ने के दो दरवाजे हैं, दो धारणाएं हैं, अटेंशन और चेकिंग, है ना? जितना हम अपने आप की अटेंशन रखेंगे, जितना अपने आप को चेक करते जाएंगे, चेक एंड चेंज करते जाएंगे, उतनी हमारी स्मृतियां उज्ज्वल होती जाएंगी और हमारा जीवन अपने आप में जिसकी हमें कामना है, जिसकी हमें शुभ इच्छा है कि हम संसार में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त होते हुए जीवन मुक्त स्थिति का आनंद ले। क्योंकि सत्य में तो हम जीवन मुक्त है ही, उसमें वर्णन नहीं होगा, उसमें आपस में एक दूसरे से लेन देन नहीं होगा, परंतु लेन देन अनुभव अनुभूतियां जहां जीवन बंद है, दुख है, अशांति है, गिरावट है, उदासी है, निराशा है, और वहां से जब हम ऊपर उठते हैं और चलते हैं अपने आप को जीवन मुक्त अवस्था में, वहां खुशियां हैं, मौज है, आनंद है, डिटैच है, खिला हुआ फूल है, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, तो अंतर हमारे को इसी कल्याणकारी संगम युग पर ही होना है। ये संगम युग है ही जीवन मुक्त बनाने का युग, और इस पुरुषोत्तम युग में भगवान ने हम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने के लिए अनेक प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, ना दे दिए। अब उन अस्त्र शस्त्रों को हम यूज नहीं करें, है ना? सिर्फ यही सोचे ये तो विष्णु जी के हैं। नहीं, विष्णु का लक्ष्य है हमारा, विष्णु जी के हाथ में या दुर्गा के हाथ में ये अगर अलंकार है तो दुर्गा को अलंकारों की जरूरत नहीं है, विष्णु जी को अलंकारों की जरूरत नहीं है। ये अलंकार हमारे लिए है, हमें संसार में रहते हुए ज्ञान की तलवार से, स्वदर्शन चक्र से, शंख ध्वनि से, और फिर ज्ञान गदा से, कमल फूल से अपने जीवन को उज्ज्वल बनाना है। तो ये अलंकार हम योद्धाओं के लिए हैं, हम युद्ध स्थल पर करे हैं। अगर युद्ध दुश्मन वार कर रहा है और हम कबूतर की तरह आंख बीच करके खड़े रहे ना, तो बिल्ली क्या करेगी? कबूतर को खा जाएगी, है ना? ठीक किसी प्रकार अगर हम सोचे कि ये अलंकार तो हमारे पास पड़े हुए हैं, अपने रखे हुए तिजोरी के अंदर, बुद्धि रूपी तजूरी में रखे हुए हैं, टाइम आने पर अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं तो हम सशक्त कब बनेंगे? सशक्त हमें यही बनना है, संपूर्ण हमें यही बनना है, संपन्न हमें यही बनना है और श्रेष्ठ और महान हमें यही बनना है। तो जब यही बनना है तो हम योद्धाओं को परमात्मा पिता की याद का कवच भी पहन के रखना पड़ेगा, क्योंकि याद एक ऐसा कवच है जो माया रूपी दुश्मन कितना भी वार करने की कोशिश करेगी उसका वार नहीं हो सकता। तो अपने आप को हमें इस संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, कर्म में रहते हुए सावधान करके भी चलना है और सदा ऊंची स्मृति की मैं योद्धा हूं और मुझ योद्धा को पास विद ऑनर होना है, है ना। जब ये बात बुद्धि के अंदर रहेगी और साथ साथ मेरी अपनी निज धारणाएं, मेरे को तीन चीजों की आवश्यकता है। आप देखेंगे संसार में कोई भी व्यक्ति है उसको तीन चीजों की आवश्यकता, अगर उसके बिना उसका जीवन होता है तो वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। धन चाहिए, ज्ञान धन भी चाहिए, स्थूल धन भी चाहिए, चाहिए सफलता, चाहिए चाहिए सफलता और ज्ञान धन या स्थूल धन तभी आएगा, सफलता हमें तभी मिलेगी जब प्रेम रूपी धन चाहिए। नहीं, जीवन में अगर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। इस बार मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक ग्रस्त परिवार के घर के आगे तीन संत बैठे हुए थे। माता जब घर से बाहर निकली तो देखा तीन संत बैठे हैं, तो वो उनको कहती है आइए महाराज हमारे घर को पवित्र करिए। तो वो कहते हैं कि जब तक घर का मालिक घर के अंदर नहीं होता तो हम किसी के घर में नहीं जाते, जाओ देख के आओ तुम्हारे घर का मालिक घर में है। तो जब उसका पति घर के अंदर आ जाता है तो फिर वो संतों के पास जाती है और कहती है चलो अभी हमारे घर में चलो ना। तो कहा देखो भाई, एक संत का नाम है धन, दूसरे संत का नाम है सफलता, तीसरे संत का नाम है प्रेम। अब तुम ये बताओ पहले कौन चले? हम अकेले अकेले जाते हैं, सब इकट्ठे नहीं जाते। तो वो कहती है मैं अपने घर से पूछ के आती हूँ कौन आए। वो घर में जाती है तो कहती है एक संत का नाम धन है, अपने पति से पूछती है पहले। तो पति कहता है अरे धन आ जाएगा तो माला माल हो जाएंगे, तुम संत को बुलाओ, धन वाले संत को बुलाओ। पर फिर वो खुद ही जवाब देती है अरे भाई धन तो आना जाना है, आज है कल चला जाएगा, क्यों नहीं सफलता को बुलाया जाए। तो फिर उसकी बहू पास में बैठी थी, वो ज्यादा समझदार थी, कहती है मां जी अगर प्रेम को बुलाया जाए तो कैसा रहेगा। उन दोनों को उसकी बात समझ में आ गई तो वो बाहर जाके कहती है प्रेम जो संत प्रेम है, प्रेम नाम के हैं, वो चले हमारे घर में। तो वो तीनों ही उठ करके चल पड़े। तो कहा क्यों? तो वो कहने लगे जहां प्रेम होगा वहां धन होगा, वहां सफलता होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, आज हम अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते सफल बनाना चाहते, खुशनुमा बनाना चाहते, मौजों की जीवन व्यतीत करना चाहते और सदा न्यारे प्यारे डिटैच होकर के भी रहना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले अपने आप से प्रेम करना सीखो। फिर बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने जो मर्यादाएं हमारे लिए रखी है, बाबा ने जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाने की ट्रेनिंग हम बच्चों को दी है ना, उन सब बातों को मनन करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो। क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वो आपका अपना धन नहीं बनेगा, निज धन नहीं बनेगा, निज धारणाएं नहीं बनेगी। और जब तक हमारी नीच धारणाएं नहीं बनी तो चेंज भी नहीं आएगा। हम ऊपर ऊपर से टेम्परेरी चेंज में चलते चलेंगे। परंतु आज हम सब के लिए बाबा की एक ही संकल्प है, बच्चे अब तुम रिटर्न जर्नी पर हो। रिटर्न जर्नी पर है, अपने आप से सवाल पूछो, मैं सब बातों से मुक्त हो गया? मेरे मुख से एक ही एक बात निकल रही है। मुझे याद आता है एक बचपन में एक फकीर हमारी गली में आया करता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना लत्ता चाहिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, भगवान का नाम चाहिए। और बाबा भी कहता है तुम्हारी इस झुग्गी झोंपड़ी से, वो भी एक हमारे लौकिक पिता गाया करते थे, संतन की आवाज वही आए, हरि ओम की आवाज वही आए, संतन की झुग्गी दबिचो, है ना। तो वास्तव में ये झोंपड़ी है, इस झोंपड़ी इस मंदिर से में रहते हुए हम निर्बंधन बनना चाहते हैं, इस झोंपड़ी में रहते हुए हम कर्म बंधन से अतीत होना चाहते, कर्मातीत होना चाहते हैं। तो कौन सी आवाज आनी चाहिए? ओम 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 के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। जितना जितना ओम के अर्थ स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, उतना उतना हमारी स्थिति अपने आप में महान बनती जाएगी। और फिर बाबा कहता है कि मैं आप बच्चों को रॉयल और रियल रूप में देखना चाहता हूं, वो संस्कार आप बच्चों के अंदर देखना चाहता हूं, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं उसके उसकी झलक और फलक चेहरे और चलन में देखना चाहता हूं। तो वो चेहरा और चलन चमत्कारी बना, नैनों में वो रूहाब है, नशा है, रूहानियत है, हमारी पर्सनैलिटी से हमारे इर्द गिर्द एक रूहानी ईश्वर के पुत्र है, सनशूज फादर, बाप की चमक दमक, बाबा ब्रह्मा बाबा को हजारों लाखों के बीच में खड़ा करते तो वो एक अलग दिखाई देता, मम्मा को हजारों लाखों के बीच में खड़ा करते तो वो एक अलग दिखाई देती। आज हम कहते हैं हम जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये सवाल कुछ अपने आप से भी पूछ लिए कि सचमुच मैं इतनी न्यारी प्यारी, इतनी अनासक्त वृत्ति वाली, डिटैच माइंड और गुण और शक्तियों से संपन्न आत्मा बन गई, सतो प्रधान वृत्तियां मेरी बन गई, क्योंकि वृत्तियों से ही वृत्तांत बनता है। आज बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें सदा ये ध्यान रखना चाहिए, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख कौन करेंगे, तुम्हारे हर कर्म का एक विधान बन रहा है, कल्प कल्पांतर तुम्हारे कर्मों का विधान और बनना है, तो विधान बनाने वाले, नियम बनाने वाले, मर्यादा बनाने वाले हम हैं। और आज हमारी मनोस्थिति, आज हमारे स्वरूप में वो सचमुच बाप के कदम चिन्हों पर हम चलने वाले दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ा ये बातें अपने आप से करने की है, जितना जो अपने से बात करना जानता है उतना उसका भाग्य श्रेष्ठ बनता है ना। जो अपने से बात करना नहीं जानता, अपने आप से सवाल पूछना नहीं जानता, वो अपने आप को इतना महान महान नहीं बना सकता। चलिए आज हम एक बात और आपको बता रहे हैं कि एक बार एक संत, क्योंकि बाबा हमको बहुत पद्म पति स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहता है ना, तो एक संत एक स्थान पर बैठे हुए थे और वो बोलते रहते, जो बोओगे सो पाओगे, जो सोचोगे नहीं, जो सोचोगे वो बन जाओगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। अब लोगों ने सोचा ये कोई पागल सा संत लगता है, जो सोचेंगे वो बन जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पर एक युवक आया, उसने कहा ठीक है मैं इसे पूछता हूँ। तो कहता महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं? तो कहा यही तो बोल रहा हूँ, जो सोचोगे वो बन जाओगे। तो कहा कैसे? कहा तुम सोचो मैंने मेरे को क्या बनना है। तो वो दो मिनट सोच के कहता है मुझे तो हीरो का व्यापारी बनना है, जबकि उसके पास कुछ नहीं था, पैसा इकॉर्डी भी नहीं थी, मुझे हीरो का व्यापारी बनना है। तो संत ने क्या किया, उसको कहा तुम बन जाओगे हीरो का व्यापारी। तो कहता अच्छा। तो कहता अपना राइट हैंड दिखाओ। तो उस राइट हैंड में उसने लिख दिया धैर्य, दूसरा लेफ्ट हैंड में लिख दिया समय, और कहा जाओ तुम बन जाओगे हीरो का व्यापारी। अब वो सोचने लगा कि धैर्य और समय इन दोनों को साथ लेकर के मैं हीरो का व्यापारी, मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं, कैसे बन जाऊंगा, है ना। जैसे हमारे भी भाई बहन कभी कभी सोचने लगते हैं, बाबा कहता है तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, तो सोचने लगते कैसे बन जाएंगे, है ना। ऐसे ही वो भी सोचने लगा। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोच करके कहा कि चलो आज हम कोई हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। अब वो नौकरी करने लगा, उसके सामने कई प्रकार की परिस्थितियां आती थी, कई उतार चढ़ाव आते थे, कई गिलानी के बोल आते थे, तो भी समय को वो सामने रखता था और धैर्य था, मुझे धैर्यवत होकर के सब सहन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे धैर्यवत होकर के सब सहन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे समय के अनुसार मेहनत करके आगे बढ़ना है ना। ये दोनों बातें उसने अपने पल्ले गांठ बांध ली। और हम भी जब तक बाबा की बातों को गांठ बांध के नहीं रखेंगे ना, तब तक हमारी मनोस्थिति ऊंची नहीं हो सकती है ना। अब गांठ बांध ली, और आपको मुझे सुनाते हुए बड़ी खुशी होती कि इन दोनों के आधार से वो एक दिन हीरो का व्यापारी बन गया, नौकरी की और हीरो का व्यापारी बन गया। ऐसे ही हम चाहे तो अपने आप को जो बनाना चाहे, अपना चित्र निकालिए और उस चित्र के सामने एक देवताओं का चित्र, जैसे बाबा पहले पहले। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो शुरू शुरू में बाबा दो प्रकार के चित्र निकालता था हम लोगों के, एक तपस्या का चित्र और एक पूरे देवताई पोशाक पहनाकर, कोई को मेल का कोई को फीमेल का फोटो निकालता था, और कहता था ये दोनों फोटो अपने सामने रखना, तब से मुझे राजभाग्य पाना है ना, मुझे ये बनना है और तपस्या मुझे करनी है ना। और अगर कोई बच्चा गलत काम कर देता, बाबा उसका काला मुंह करके उसके पास फोटो वापस कर देता, है ना। तो उससे बड़ा एक उत्साह पैदा होता था, उमंग पैदा होता था कि मुझे मेरे को बाबा ने ये ड्रेस बनाई है और मेरे को ये लक्ष्य दिया है, मुझे ये बनना ही है, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये इस यात्रा के अंदर अपनी जीवन रूपी यात्रा में ये उपाधि ये स्थिति बना करके इस तक पहुंचना है, इस मार्जन तक पहुंचना है। तो मैंने देखा शुरू के बच्चों में जो त्याग था, तप था, वैराग था, विरक्त भावनाएं थी, उतना उतना चेंज आते 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 आज उन्हीं का प्रभाव है ये सब। ये आज जो इतना फलता फलता संसार ब्रह्मा कुमारी इसका दिखाई पड़ता है ना, ये उस बाबा का और बड़ी बड़ी दादियों दीदियों का प्रभाव है, जो एक बल और एक भरोसे, क्या उनके आगे कितनी परीक्षाएं आई होंगी, परंतु उन्होंने यही लक्ष्य रखा, कदम कदम बराए जा खुशी के गीत गाए जा, है ना। तो हम सबको भी कदम कदम बढ़ाना, कहते हैं एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी मंजिल है जीवन मुक्त स्थिति का आनंद लेना, और वो अभी वेला है, उसके बाद ये वेला खत्म हो जाएगी, है ना। तो जब वेले के अनुसार बीज बोओगे तो फल जरूर मिलेगा। बीज बोने का समय खत्म हो गया और फिर कहो मुझे उसका फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता। तो ये संगम युग है, है? फल बीज बोकर भविष्य में फल खाना है। मैं तो कहती हूँ यही फल खाना है। जिन्होंने जितना त्याग किया है सचमुचो, उन्होंने इधर ही उतना बड़ा भाग्य, उतना बड़ा ताज पहना है। भविष्य में तो ताजदारी बनेंगे ही बनेंगे, ये त्याग से ही इधर ही संगम युग में ही उनको सर्व प्राप्तियां होती जा रही है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर भी हम कबूतर की तरह आंख बंद करके चल रहे हैं, तो कसूर किसका है? मेरा है, मेरे कर्मों का है, और किसी का नहीं। तो हम भाग्यवान बने, जीवन बंद से जीवन मुक्त स्थिति का आनंद ले। वो तभी होगा जब श्रीमत और मर्यादाओं के अनुकूल अपने जीवन को चलाएंगे। ओम शांति शांति शांति।